नमस्कार. रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी मध्ये मी आरजे तेजल आपल्या सगळ्यांचे पुन्हा एकदा स्वागत करते. जाणून घेऊया चालू घडामोडी. संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना अर्थात DRDO आणि भारतीय नौदलाने ओडिशाच्या किनारपट्टीवरील एकात्मिक चाचणी तळावरून चांदीपूर इथे नौदलाच्या हेलिकॉप्टर मधून प्रक्षेपित केलेल्या स्वदेशी नौदल जहाजरोधी क्षेपणास्त्राची पहिली उड्डाण चाचणी यशस्वीरित्या घेतली आहे. मोहिमेने या चाचणीची सर्व उद्दिष्टे पूर्ण केली. भारतीय नौदलासाठी हवेतून मारा करणारी ही पहिली स्वदेशी जहाजरोधी क्षेपणास्त्र प्रणाली आहे. क्षेपणास्त्राने रडारच्या कक्षेत न येता सी स्किमिंग सागरी पृष्ठभागाच्या काही फुटांवरून मार्गक्रमण करत नियंत्रण मार्गदर्शन आणि मोहिमेच्या मापदंडांचे तंतोतंत पालन करून अचूक लक्ष्यभेद केला. सर्व उपप्रणालींनी समाधानकारक कामगिरी केली. चाचणी तळ आणि लक्ष्यभेद स्थळाजवळ तैनात सेन्सर्सने क्षेपणास्त्राच्या मार्गाचा मागोवा घेतला आणि सर्व घटनांची नोंद केली. क्षेपणास्त्रात अनेक नवीन तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव केला आहे. यामध्ये हेलिकॉप्टर साठी स्वदेशी विकसित लॉन्चरचाही समावेश आहे. क्षेपणास्त्र मार्गदर्शन प्रणालीमध्ये अत्याधुनिक दिशादर्शक प्रणाली ज्यास आपण नेव्हिगेशन सिस्टम म्हणतो एकात्मिक एव्हिओनिक्सचा सुद्धा समावेश आहे. उड्डाण चाचणीवेळी DRDO आणि भारतीय नौदलाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पहिल्या विकासात्मक उड्डाण चाचणीसाठी DRDO भारतीय नौदल आणि संबंधित संघांचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अभिनंदन केले. वळूया पुढील बातमीकडे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगांच्या संचालक मंडळांना त्यांच्या अधिपत्याखालील संयुक्त उपक्रमामधील त्यांच्या सहाय्यक कंपन्या किंवा युनिट्स मधल्या निर्गुंतवणुकीचे ते बंद करण्याबाबतची प्रक्रिया हाती घेण्याची शिफारस करण्याचे आणि पर्यायी यंत्रणेला अतिरिक्त अधिकार प्रदान करण्यासाठीचे अधिकार बहाल केले आहेत. मंत्रिमंडळाने पर्यायी यंत्रणेला निर्गुंतवणुकीसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगांच्या संयुक्त उपक्रमामधील त्यांच्या सहाय्यक कंपन्या किंवा युनिट्स किंवा समभागांची विक्री बंद करण्यासाठी तत्वतः मान्यता देण्याचा अधिकार दिला आहे. पर्यायी यंत्रणेला मुख्य सार्वजनिक उपक्रमातल्या कंपनीकडून केला जाणाऱ्या निर्गुंतवणुकीच्या किंवा उपकंपनी बंद करण्याच्या प्रक्रियेचा आढावा घेण्याचा अधिकार देखील प्रदान केला आहे.
यानंतर वळूया पुढील बातमीकडे. राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरण 2018 मधील सुधारणांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय नवीन आणि नूतनीकरण क्षम ऊर्जा मंत्रालयाने 2009 मध्ये काढलेल्या राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरणाची जागा घेण्यासाठी केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिनांक 4 जून 2018 रोजी राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरण 2018 अधिसूचना काढली होती. जैविक इंधनांच्या क्षेत्रात झालेली प्रगती राष्ट्रीय जैविक इंधन समन्वय समितीच्या बैठकांमध्ये जैविक इंधनाचे उत्पादन वाढवण्यासंबंधी घेतलेले निर्णय स्थायी समितीच्या शिफारशी आणि दिनांक 1 एप्रिल 2023 पासून देशभर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मध्ये इथेनॉलचे प्रमाण 20% वाढवण्याचा पूर्ववर्ती निर्णय या घटकांमुळे राष्ट्रीय जैविक इंधन धोरणात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामुळे एतदेशीय तंत्रज्ञानाच्या विकासाला गती मिळू शकेल. तसेच याची परिणिती म्हणून मेक इन इंडिया मोहिमेसाठी मार्ग मोकळा होऊ शकेल. तसेच रोजगार निर्मिती सुद्धा होईल. जैविक इंधनाविषयीचे विद्यमान राष्ट्रीय धोरण 2018 मध्ये अस्तित्वात आले. सुधारणांच्या सदर प्रस्तावामुळे मेक इन इंडिया मोहिमेचा मार्ग प्रशस्त होईल. जैविक इंधनांच्या अधिकाधिक निर्मितीमुळे पेट्रोलियम उत्पादनांची आयात कमी करता येईल. जैविक इंधनांच्या निर्मितीसाठी अधिकाधिक कच्च्या मालाला परवानगी मिळत असल्याने आत्मनिर्भर भारत अभियानाला प्रोत्साहन मिळेल व या साऱ्याची परिणिती म्हणून 2047 पर्यंत भारताला ऊर्जेबाबत स्वावलंबी करण्याचे आपले स्वप्न साकारण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल. जाणून घेऊया टपाल विभागाची बातमी. सार्वजनिक खरेदीमधील शेवटच्या टोकापर्यंतचे सरकारी खरेदीदार विक्रेते आणि सेवा प्रदात्यांना पाठबळ देण्यासाठी त्यांना एका ठिकाणी आणण्यासाठी त्यांची क्षमता बांधणीसाठी टपाल विभागाने सरकारी ई मार्केट प्लेस आणि CSC ई गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड सोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या सामंजस्य करारावर GEAM चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी PK सिंह, CSCSPV चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार राकेश आणि पार्सल संचालनालयाचे मुख्य महाव्यवस्थापक अजय कुमार रॉय यांनी नवी दिल्ली येथे स्वाक्षरी केली आहे. GEM आणि भारतीय टपाल विभागाच्या यशस्वी एकत्रीकरणानंतर या सामंजस्य कराराची संकल्पना मांडण्यात आली. या एकत्रीकरणामुळे आता सर्व सरकारी खरेदीदार, विक्रेते आणि सेवा प्रदात्यांना भारतीय दुर्गम भागात असलेल्या भारतीय टपाल कार्यालयातून GEM वरील लॉजिस्टिक सेवा आणि सुविधांचा लाभ घेणे शक्य झाले आहे. या व्यतिरिक्त टपाल विभागाची 1.3 लाखाहून अधिक CSC विक्री व्यवस्था केंद्रे GEM वर विक्रेत्यांना उत्पादन विक्रीसाठीची सुविधा उपलब्ध करून देतील. टपाल विभाग आणि GEAM यांच्यातील या करारामुळे विक्रेत्यांना त्यांच्या GEAM पोर्टलवरील प्रोफाईल पेजवरून वस्तूंची उचल, नोंदणी, परिवहन आणि वितरणासाठी टपाल विभागाच्या सेवांची निवड करता येईल. GEM आणि CSC SPV सोबतची नवीन भागीदारी GEM पोर्टलवरील विक्रेत्यांसाठी अधिक पसंतीचा लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता म्हणून टपाल विभागाला पुढे आणेल, असे टपाल सेवा विभागाचे महासंचालक अलोक शर्मा यांनी सांगितले. वळूया आंतरराष्ट्रीय घडामोडीकडे. किंगस्टन मध्ये जमैका संसदेच्या दोनही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संबोधित केले आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे प्रतिनिधी म्हणून जमैकाच्या चैतन्याने सळसळणाऱ्या लोकशाही नेत्यांच्या मेळाव्याला संबोधित करणे ही त्यांच्यासाठी खरोखरच सन्मानाची बाब आहे. केवळ भारतीय वंशाचे लोक आणि सांस्कृतिक बंधच आपल्या दोनही देशांना एकत्र आणत नाही, तर लोकशाही आणि स्वातंत्र्यावरील आपला विश्वास देखील एकत्र बांधून ठेवतो. सर्व नागरिकांची निर्मिती समानच झाली ही कल्पना जमैकाच्या राज्यघटनेचा मध्यवर्ती स्तंभ आहे. भारताच्या संस्थापकांनी सुद्धा असाच विश्वास व्यक्त केला होता. भारतातील प्रत्येक नागरिकासाठी वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला गेला, एक आधुनिक राष्ट्र निर्माण केले. यामध्ये स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि समानता प्रदान केली गेली. आम्ही विविधतेत एकता साजरी करावी हे भारतीय संविधानकर्त्यांनी सुनिश्चित केले. जमैकाच्या आउट ऑफ मेनी वन पीपल या ब्रीद वाक्याप्रमाणेच भारताचे सुद्धा आहे. समृद्ध नैसर्गिक संसाधने, धोरणात्मक दृष्ट्या मोक्याचे स्थान, तरुण लोकसंख्या, गतिमान नेतृत्व यामुळे जमैका आणखी मोठ्या आर्थिक यशासाठी सज्ज आहे. कॅरिकॉम प्रदेशातील त्यांचे नेतृत्व, आंतरराष्ट्रीय नियम आधारित वर्तन, अधिक जबाबदारी स्वीकारण्याची इच्छा यामुळे इतर देशांसाठी जमैका पसंतीचे भागीदार ठरत असल्याचे आपल्या राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे. काही आघाडीच्या जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या सानिध्यातील जमैकाचे धोरणात्मक स्थान आणि हुशार इंग्रजी भाषक तरुणाई याला ज्ञान महामार्ग बनण्याची आणि चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचा लाभ घेण्यासाठी उत्कृष्ट संधी प्रदान करत आहे. एक समृद्ध आणि शाश्वत अर्थव्यवस्था बनवून आपल्या लोकांना सशक्त बनवणे, सुरक्षित, एकसंध आणि न्याय्य समाज सुनिश्चित करण्याच्या जमैकाचे व्हिजन 2030 उद्दिष्ट भारत सुद्धा सामायिक करतो असेही राष्ट्रपतींनी म्हटले. जमैका सोबत भागीदारी करण्यास आणि आपली तांत्रिक कौशल्ये, ज्ञान आणि तज्ज्ञ सल्ला सामायिक करण्यास भारत तयार आहे. त्यामुळे जमैकाच्या शिक्षण आणि व्यवसाय क्षेत्रात परिवर्तन घडून येऊ शकते असे राष्ट्रपती म्हणाले. त्यांनी नमूद केले की जमैकातील आघाडीचे उद्योग आधीपासून भारतातील तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून सॉफ्टवेअर आणि इतर तांत्रिक सहकार्य घेत आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारत आणि जमैका आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी अंतर्गत सहकार्य करत आहे. भारताची सामर्थ्यस्थळे असलेल्या रेल्वे आणि कृषी क्षेत्रात भागीदारी करण्याची मोठी क्षमता आहे. जमैकाची लोकसंख्या 30 लाखांपेक्षा कमी असून ऑलिम्पिक, जागतिक स्पर्धा आणि इतर प्रमुख क्रीडा स्पर्धांमध्ये जमैका अॅथलेटिक्स मधील आपला दबदबा राखून आहे. जमैकाकडून क्रीडा आणि अॅथलेटिक्सचे धडे घेण्यास भारत इच्छुक आहे असे राष्ट्रपतींनी म्हटले. संगीत आणि मनोरंजनामध्ये परस्पर देवाणघेवाण केल्यास दोनही देशांमधील मनोरंजन उद्योग समृद्ध होतील. तसेच आदरातिथ्य आणि पर्यटनात एकमेकांकडून सहकार्य आणि शिकण्यास खूप वाव आहे असंही राष्ट्रपती म्हणाले. जमैकाच्या भेटीनंतर राष्ट्रपती त्यांच्या सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनाइड्सच्या दौऱ्याच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी रवाना झाले. वळूया पुढील बातमीकडे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यांच्या मुंबई दौऱ्यादरम्यान भारतीय नौदलाच्या P-8I या लांब पल्ल्याच्या सागरी टेहळणी पाणबुडी विरोधी लढाऊ विमानातून उड्डाण केले. या दरम्यान मंत्र्यांना अत्याधुनिक मिशन सूट आणि सेन्सरचा वापर करून लांब पल्ल्यापर्यंत टेहळणी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, प्रतिमा बुद्धिमत्ता, पाणबुडी विरोधी लढाऊ मोहिमा तसेच शोध आणि बचाव क्षमतांचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. PHI विमानाचा समावेश 2013 पासून नौदलात करण्यात आल्यानंतर हिंद महासागर क्षेत्रात भारतीय नौदलाच्या सातत्यपूर्ण टेहळणी मोहिमांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. जाणून घेऊया पुढील बातमी. फिनलँड व स्वीडन यांनी नाटोच्या सदस्यत्वासाठी औपचारिकरित्या अर्ज केला असल्याचे जगातील सर्वात मोठ्या लष्करी आघाडीचे महासचिव स्टॉल्टेनबर्ग जेन्स यांनी सांगितले. रशिया आणि युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाची पार्श्वभूमी या घडामोडीला आहे. फिनलँड व स्वीडन यांच्या नाटोत सहभागी होण्याच्या विनंतीचे मी स्वागत करतो. तुम्ही आमचे सर्वात घनिष्ठ भागीदार आहात, असे या दोन देशांच्या राजदूतांकडून विनंती पत्रे मिळाल्यानंतर स्टॉल्टेनबर्ग यांनी पत्रकारांना सांगितले. या अर्जाला आता 30 सदस्य देशांचा पाठिंबा मिळणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेला सुमारे 2 आठवडे लागण्याची शक्यता आहे. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगन यांनी फिनलंड व स्वीडन यांच्या नाटोतील सहभागाबद्दल आक्षेप नोंदवला आहे, मात्र हा आक्षेप नाकारण्यात आला. नाटो प्रवेशाबाबतची बोलणी ठरल्याप्रमाणे पार पडली. येत्या काही महिन्यात हे दोनही देश सदस्य बनू शकतील. या प्रक्रियेला सहसा 8 ते 10 महिने लागू शकतात, मात्र दोनही नॉर्डिक देशांच्या डोक्यावर रशियाच्या धोक्याची टांगती तलवार लक्षात घेऊन नाटो ही प्रक्रिया लवकरात लवकर चालू होण्याची इच्छा वर्तवली जात आहे. या दोन देशांच्या प्रवेशाला काही दिवसातच मंजुरी देण्याची आपल्याला अपेक्षा असल्याचे कॅनडाने म्हटले आहे. 24 फेब्रुवारी रोजी युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून फिनलँड आणि स्वीडन या देशातील जनमत यांनी नाटोचे सदस्यत्व घेण्याच्या मोठ्या प्रमाणावर झुकले आहे. हे दोनही देश नाटोशी घनिष्ठ सहकार्य करत आले आहेत. वळूया आजच्या शेवटच्या बातमीकडे. दिल्लीचे उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला आहे. वैयक्तिक कारणांमुळे बैजल यांनी राजीनामा दिल्याचं सूत्रांकडून सांगण्यात आलं आहे. त्यांनी 5 वर्ष 5 महिने दिल्लीचे उपराज्यपाल म्हणून कामकाज पाहिला. त्यानंतर त्यांनी अचानक आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क लावले जात आहे. अनिल बैजल हे डिसेंबर 2016 दिल्लीच्या उपराज्यपाल पदावर नियुक्त झाले होते. ते 1969 बॅचचे IAS अधिकारी आहेत. यापूर्वी त्यांनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात DDAचे उपाध्यक्ष आणि केंद्रीय गृह सचिव म्हणून कामगाज एअरलाइन्स सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचंही नेतृत्व केलं आहे. 2006 बैजल यांनी शहरी विकास विभागाचे सचिव म्हणूनही काम केलं आहे. त्यानंतर ते सेवानिवृत्त झाले होते.
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ RJ तेजल. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पेक्ट्रम अकादमी के रेडियो MPSC गुरु पे. आइए सुनते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स अपडेट. आज का पहला अपडेट है नियुक्ति के बारे में. पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार ने 15 मई को पूर्व CEC सुशील चंद्रा, जो 14 मई को सेवानिवृत्त हुए थे, उनके स्थान पर मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC के रूप में कार्यभार को संभाला है. पदभार ग्रहण करने के बाद श्री कुमार ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पिछले 70 वर्षों में बहुत कुछ किया गया है. उन्होंने कहा चुनाव आयोग किसी भी बड़े सुधार के लिए परामर्श और सर्वसम्मति के साथ लोकतांत्रिक तरीकों का पालन करेगा. आयोग कड़े फैसलों से पीछे नहीं हटेगा. श्री कुमार, जो 1 सितंबर 2020 से चुनाव आयुक्त थे, संभवतः 2024 के लोकसभा चुनावों की देखरेख करेंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल 2025 तक है. अगला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय समाचार का. अभिनेत्री दीपिका पादुकोण लग्जरी ब्रांड लुइस विटॉन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन गई है. इस खबर की घोषणा फ्रेंच ब्रांड ने की थी. ब्रांड ने अपने नए हैंडबैग अभियान के दौरान 36 वर्षीय बॉलीवुड अभिनेत्री की भूमिका का अनावरण किया. इसने पादुकोण को प्रमोशनल शॉट्स के लिए अभिनेत्री एमा स्टोन और जो डोंग्यू के साथ शामिल होते देखा. पादुकोण को अक्सर लुइस विटॉन के आउटफिट और बैग पहने हुए देखा जाता है और उन्होंने पहले भी उनके लिए मॉडलिंग की थी. वह 2020 में ब्रांड अभियान में शामिल होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी, जब उन्होंने ली सेडॉक्स और सोफी टर्नर जैसे सितारों के साथ मॉक बुक कवर के लिए पोज दिया. अगला अपडेट है समझौते के बारे में. भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक ICICI बैंक ने ब्रिटेन में सेंटेंडर बैंक के साथ एक समझौते की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों में काम कर रहे कॉर्पोरेट्स की बैंकिंग आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाना है.
ICICI बैंक ने कहा कि मुंबई में हस्ताक्षर किए गए ICICI और सेंटेडर यूके PLC के बीच समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भारत यूके कॉरिडोर के भीतर काम करने वाले कॉरपोरेट ग्राहकों की वित्तीय सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों के बीच साझेदारी की रूपरेखा स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत में काम कर रहे यूके कॉरपोरेट्स को ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, सप्लाई चेन, ट्रेजरी सॉल्यूशंस और रिटेल बैंकिंग में बैंकिंग समाधान प्रदान करेगा और यूके में सेंटेडर यूके उनकी बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए भारतीय कॉरपोरेट्स और नए युग के व्यवसायों का समर्थन करेगा। अगला अपडेट है, भारत के दक्षिणी भागों में टोमेटो फ्लू का प्रकोप हुआ है। इसके बारे में राज्य के कोलम जिले में 13 मई तक टोमेटो फ्लू के कम से कम 82 मामले सामने आने के साथ महामारी से पीड़ित केरल एक नए स्वास्थ्य आपातकाल के लिए तैयार है। छोटे बच्चे मुख्य रूप से बुखार, त्वचा पर लाल चकते और डिहाइड्रेशन के लक्षण वाले इस अत्यधिक संक्रामक रोग के शिकार होते हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोल्लम में टोमेटो फ्लू के प्रसार की निगरानी के लिए एक निगरानी दल का गठन किया है। 5 साल से कम उम्र के संक्रमित बच्चों की जांच के लिए आंगनबाड़ियों की जांच की जा रही है। फ्लू पहले केरल तमिलनाडु सीमावर्ती गांव आर्यन काऊ अंचल और नेदुवथुर में दर्ज किया गया था और बाद में अन्य क्षेत्रों में फैल गया। आर्यन काऊ में 4 साल के बच्चे का पहला मामला 6 मई को सामने आया था। अगला अपडेट है बैंकिंग के बारे में। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस भारत के प्रमुख व्यापारिक समूहों में से एक, भारतीय एंटरप्राइजेस और दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक एक्सा के बीच एक संयुक्त उद्यम ने अपनी वित्तीय साक्षरता अभियान इंस्पायर एनेबलिंग एंड एम्पावर्ड फ्यूचर के शुभारंभ की घोषणा की। एक विशेष पहल महिलाओं के बीच वित्तीय जागरूकता फैलाने और उन्हें सुरक्षित भविष्य के लिए सूचित वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए ये घोषणा की गई है। शोध से पता चलता है कि 55% महिलाएं सूचित वित्तीय निर्णय नहीं लेती है और 59% महिलाओं के पास कोई स्वास्थ्य या जीवन बीमा नहीं है। इस अभियान के माध्यम से कंपनी का लक्ष्य महिलाओं, विशेषकर माताओं, उनके परिवारों और देश के करीब 10 लाख नागरिकों के साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर जुड़ना है, क्योंकि महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। अगला अपडेट है योजनाएं और समितियों के बारे में। हरियाणा सरकार ने किसानों को चारा उगाने के लिए प्रोत्साहित करने और गौशालाओं की मदद करने के लिए चारा बिजाई योजना शुरू की, जो आवारा मवेशियों की आबादी में वृद्धि के बीच चारों की कमी से जूझ रहे हैं। इस योजना के तहत जिन किसानों ने गौशालाओं से करार किया है, वे चारे की खेती के तहत 10 एकड़ तक के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने कहा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। राज्य सरकार किसानों के हित में कई कदम उठा रही है और चारा बिजाई योजना उसी दिशा में एक और कदम है। अप्रैल में राज्य की 559 गौशालाओं में चारा खरीद के लिए 13.44 करोड़ रुपए बांटे गए थे। अगला अपडेट है योजनाएं और समितियों के बारे में। एक बार फिर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की घोषणा की है। PMGKAY के तहत जरूरतमंद लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। भारत की ताकत देश के प्रत्येक नागरिक की शक्ति में निहित है। इस शक्ति को मजबूत करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर 2022 तक 6 महीनों तक जारी रखने का फैसला किया है। देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका फायदा उठा सकेंगे। पीएम मोदी यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक के बाद आया है, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की थी। अगला अपडेट है शिखर सम्मेलन के बारे में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकारी योजनाओं की 100% सैचुरेशन भेदभाव को समाप्त करती है, जो जरूरतमंद लोगों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। यह तुष्टिकरण की राजनीति को भी समाप्त करता है। मोदी गुजरात के भरूच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्कर्ष समारोह के संबोधित में बोल रहे थे, जो जिले में राज्य सरकार की 4 प्रमुख योजनाओं की 100% संतृप्ति को चिन्हित कर रहे थे, जो जरूरतमंद लोगों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। जिला प्रशासन द्वारा इस वर्ष 1 जनवरी से 31 मार्च तक चलाए गए उत्कर्ष पहल का उद्देश्य विधवाओं, बुजुर्गों और निराश्रित नागरिकों को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना था। अगला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय समाचार का। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने 1986 की क्रांति, जिसने अपने दिवंगत पिता की 2 दशक की तानाशाही को खत्म कर दिया, उसके बाद से पहली जीत में फिलीपींस के राष्ट्रपति चुनाव में आश्चर्यजनक जीत हासिल की है। एक अनौपचारिक टेली ने दिखाया कि मार्कोस, जिसे बोंग बोंग के नाम से जाना जाता है, इन्होंने बहुमत के लिए आवश्यक 27.5 मिलियन वोटों को पार कर लिया था, जिसने मार्कोस परिवार के शासन में जनशक्ति विद्रोह के 36 साल बाद अपमानजनक निर्वासन में अकल्पनीय वापसी के लिए मंच तैयार किया। अपने पतन के बावजूद मार्कोस परिवार 1990 के दशक में निर्वासन से लौट आया और फिलीपीन की राजनीति में एक शक्तिशाली शक्ति बना रहा, जिसने विशाल धन और दुर्गमी संबंधों के साथ अपना प्रभाव बनाए रखा। आज का आखिरी अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 7.79% हो गई, जो मुख्य रूप से ईंधन और खाद्य कीमतों में वृद्धि से प्रेरित है। उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति का आंकड़ा लगातार 4th महीने भारतीय रिजर्व बैंक की ऊपरी सीमा से काफी ऊपर रहा। अप्रैल का आंकड़ा मार्च में 6.95% और एक साल पहले 4.23% से अधिक था। खाद्य टोकरी में मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 8.38% हो गई, जो पिछले महीने में 7.68% थी। खाद्य मुद्रास्फीति, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बास्केट का लगभग आधा हिस्सा है, अप्रैल में कई महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। दोस्तों, ये थी आज की डेली करंट अफेयर्स की अपडेट। ऐसे ही अपडेट्स को सुनने के लिए डू स्टे ट्यून्ड टू रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
हेलो फ्रेंड्स, यू आर लिसनिंग टू रेडियो एमपीएससी गुरु पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकेडमी। दिस इज योर आरजे प्रियंका वेलकमिंग यू इन डेली करंट अफेयर्स अपडेट प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। Our daily update number 1 belongs to the category of appointment. Rajiv Kumar appointed as the next Chief Election Commissioner. On May 15, former Finance Secretary Rajiv Kumar took over as Chief Election Commissioner CEC, succeeding outgoing CEC Sushil Chandra, who retired on May 14. Mr. Kumar stated shortly after taking office that the Election Commission of India, ECI, had done a lot over the previous 70 years to ensure fair and free elections. The Commission will follow the time-tested and democratic methods of consultations and consensus building in bringing about any major reforms responsible under the Constitution. ECI will not shy away from tough decisions, he stated. Mr. Kumar, who has been an election commissioner since September 1, 2020, would most likely be in charge of the 2024 Lok Sabha elections because his term runs until 2025. Our next daily update belongs to the category of international. Deepika Padukone named as first Indian brand ambassador of Louis Vuitton. Deepika Padukone has been named the first Indian brand ambassador for the luxury brand Louis Vuitton. The French brand announced the news. During their new handbag campaign, the brand revealed the role of a 36-year-old Bollywood actress. Padukone appeared in promotional photos alongside Emma Stone and Zhou Donghyo. Padukone is frequently photographed wearing Louis Vuitton clothing and bags, and she has previously modeled for the brand. She was the first Indian actor to appear in the brand's 2020 campaign, posing for a mock book cover alongside stars like Lee Sudo and Sophie Turner. Daily update number 3 belongs to the category of agreement. ICICI Bank and Santander UK partners for business ease between India and UK. ICICI Bank, one of India's leading private sector banks, has announced a partnership with Santander Bank in the United Kingdom to help corporates operating in with their banking needs. The Memorandum of Understanding, MOU, signed in Mumbai by ICICI and Santander UK Police is intended to establish a framework of partnership between the banks in order to meet the financial service requirements of corporate customers operating along the India-UK corridor. ICICI Bank stated that it will provide banking solutions to both UK corporates operating in India in areas such as trade, cross-border payments, supply chain, treasury solutions and retail banking, while Santander UK will assist Indian corporates and new age businesses with their banking needs in the UK. Our daily update number 4 belongs to the category of miscellaneous. Outbreak of tomato flu in southern parts of India. With at least 82 cases of tomato flu reported in state's Kollam district as of May 13, pandemic battered Kerala is bracing for a new public health crisis. Young children are especially vulnerable to this highly infectious disease, which causes fever, red skin rashes and dehydration. To monitor the spread of tomato flu in Kollam, the state health department has formed a surveillance team. Anganwadi centers are being screened for infected children under the age of 5. The flu was first reported in the border villages of Aryankavu, Anchal and Neduvathur on the Kerala-Tamil Nadu border and then spread to other areas. On May 6, the first case of a 4-year-old child in Aryankavu was reported. Our fifth daily update for today belongs to the category of banking. Inspire Her, financial literacy campaign launched by Bharti AXA Life Insurance. A joint venture between Bharti Enterprises, one of India's leading business groups, and AXA, one of the world's largest insurance companies, Bharti AXA Life Insurance, has announced the launch of its financial literacy campaign, Inspire Her, in enabling an empowered future, a special initiative to raise financial awareness among women and empower them to make informed financial decisions for a secure future. According to research, 55% of women do not make informed financial decisions and 59% of women do not have health or life insurance. The company hopes to raise awareness about a financially secure future for women by engaging with women, particularly mothers, their families, and close to 1 million citizens of the country on Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn. Our sixth daily update belongs to the category of schemes and committees. Haryana launched Chara Bijai Yojana for fodder cultivating farmers. To encourage farmers to grow fodder and help gaushalas, which have been grappling with fodder shortage amid a rise in the stray cattle population, the Haryana government launched the Chara Bijai Yojana. Under the scheme, farmers who have tied up with gaushalas will be eligible to receive a financial aid of 10,000 rupees per acre for up to 10 acres under fodder cultivation. Agriculture and Farmer Welfare Minister J.P. Dalal said, The money will be transferred to the farmer's bank account through direct benefit transfer. The state government has been taking a number of steps in the interest of farmers, and the Chara Bijai Yojana is another step in that direction. In April, 13.44 crore rupees was distributed among 569 gaushalas in the state for purchasing fodder. Our next daily update belongs to the category of schemes and committees. PMGKAY scheme. PM Garib Kalyan Anna Yojana extended by half a year. Prime Minister Narendra Modi has announced that the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana PMGKAY will be extended until September 2022. Free food grain is distributed to those in need under the PMGKAY. The strength of India lies in the power of every citizen of the country. To further strengthen this power, the government has decided to continue the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana for 6 more months till September 2022. More than 80 crore people of the country will be able to take advantage of this as before. PM Modi stated this in a tweet. This decision was made following a meeting of the Union Cabinet, which was presided over Prime Minister Modi. Our next daily update, that is update number 8, belongs to the category of summits and conferences. In Bharuch, Pradhan Mantri Narendra Modi addresses Utkarsh Samaroh. According to Prime Minister Narendra Modi, 100% saturation of government schemes ends discrimination and need for a recommendation to get the benefits. It also puts an end to the appeasement politics. Modi was speaking through video conference to Utkarsh Samaroh in Gujarat's Bharuch to commemorate the district's 100% saturation of the four key state government schemes that will help provide timely financial assistance to those in need. The district administration's Utkarsh initiative, which ran from January 1st to March 31st this year, aimed to ensure complete coverage of schemes providing assistance to widows, the elderly and the destitute. Our daily update number 9 belongs to the category of international. Marcos Jr. wins 2022 presidential election in Philippines. Ferdinand Marcos Jr. won a stunning runway victory in the Philippines presidential election, the first by a majority since his late father's two-decade dictatorship was overthrown in 1986. An unofficial tally showed Marcos, popularly known as Bongbong, had exceeded the 27.5 million votes required for a majority, paving the way for the Marcos family's once unthinkable return to rule. 36 years after his humiliating retreat into exile during a people power uprising, despite its demise, the Marcos family returned from exile in the 1990s and has remained a powerful force in Philippines politics, owing to its vast wealth and extensive connections. Our last daily update, that is update number 10, belongs to the category of ranks and report. Retail inflation surges to 7.79% in April, highest in 8 years. According to government data, retail inflation in India rose to 7.79% in April, owing primarily to rising fuel and food prices. For the fourth month in a row, consumer price inflation remained well above the Reserve Bank of India's RBI upper tolerance limit. In April, CPI inflation rose at its fastest rate in 8 years. The previous high was 8.33% in the May of 2014. The figure for April was higher than 6.95% in March and 4.23% a year ago. In April, food basket inflation increased to 8.38%, up from 7.68% in the previous month. Food inflation, which accounts for nearly half of the CPI basket, hit a multi-month high in April. So that's all for today. Tomorrow we shall get back to you with more daily update. Till then, bye and thank you.
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तेजल, आप सभी का स्वागत करते हुए स्पेक्ट्रम अकेडमी के रेडियो एमपीएससी गुरु पे। आइए सुनते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज का पहला सवाल। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक का हाल ही में निधन हो गया है? विकल्प ए है बेलारूस, विकल्प बी किर्गिस्तान, विकल्प सी लिथुआनिया, विकल्प डी यूक्रेन। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प डी। स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक का हाल ही में निधन हो गया, वह 88 वर्ष के थे। आइए जानते हैं अगला सवाल। किसानों को चारा उगाने और गौशालाओं की मदद करने के प्रोत्साहन के लिए चारा बीजय योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? विकल्प ए है राजस्थान, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी झारखंड, विकल्प डी हरियाणा। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प डी। हरियाणा सरकार ने किसानों को चारा उगाने और गौशालाओं की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चारा बीजय योजना शुरू की है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हाल ही में किस देश ने रूस का स्थान लिया है? विकल्प ए जेक गणराज्य, विकल्प बी हंगेरी, विकल्प सी मोल्दोवा या फिर विकल्प डी स्लोवाकिया। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार परिषद में रूस के स्थान के लिए जेक गणराज्य के लिए भारी मतदान किया है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के लिए ई चालान संग्रह को डिजिटाइज करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में वर्ल्ड लाइन इंडिया के साथ भागीदारी की है? विकल्प ए बैंक ऑफ बड़ौदा, विकल्प बी बैंक ऑफ इंडिया, विकल्प सी केनरा बैंक या फिर विकल्प डी पंजाब नेशनल बैंक। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी। बैंक ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के लिए ई चालान संग्रह को डिजिटाइज करने के लिए वर्ल्ड लाइन इंडिया के साथ साझेदारी की है। अगला सवाल है, किसे टेम्पलटन पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? विकल्प ए रोजर पेनरोज, विकल्प बी मनबे स्यूक्रो, विकल्प सी जियोर्जियो पेरेसी, विकल्प डी फ्रैंक विल्जिक। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प डी। अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी, लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर फ्रैंक विल्जिक को 2022 टेम्पलटन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया है। अगला सवाल है, कौन सी भारतीय अभिनेत्री हाल ही में लुई वुइटन के लिए हाउस एम्बेसडर का पद संभालने वाली पहली भारतीय बनी है? विकल्प ए आलिया भट्ट, विकल्प बी दीपिका पदुकोण, विकल्प सी कैटरीना कैफ, विकल्प डी प्रियंका चोपड़ा। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी दीपिका पदुकोण। लुई वुइटन के लिए हाउस एम्बेसडर का पद संभालने वाली पहली ही भारतीय बनी है। पढ़ते हैं आज के सातवें सवाल की तरफ। कौन 45 किलोग्राम महिला वर्ग में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय बनी? विकल्प ए वी रितिका, विकल्प बी रेनु बाला चानू, विकल्प सी हर्षदा शरद गरुड़ या फिर विकल्प डी ज्ञानेश्वरी यादव। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी हर्षदा शरद गरुड़। 45 किलोग्राम महिला वर्ग में कुल 153 किलोग्राम वजन उठाकर IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली ही भारतीय बनी है। पिछला सवाल और ये सवाल ना के सिर्फ पहले भारतीय महिला के रूप में हमारे सामने आता है, बल्कि पहले ही भारतीय व्यक्ति के सामने आ रहा है। बढ़ते हैं आज के आठवें सवाल की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी IND 2022 कब मनाया गया? विकल्प ए 11 मई, विकल्प बी 12 मई, विकल्प सी 13 मई या फिर विकल्प डी 14 मई। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 दुनिया भर में मनाया गया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य द्वारा पहले से
पांचवी कक्षा तक के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए पौष्टिक नाश्ता योजना शुरू की गई थी। विकल्प ए आंध्र प्रदेश, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी मध्य प्रदेश या फिर विकल्प डी तमिलनाडु। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प डी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने घोषणा की है कि पहले से पांचवी कक्षा तक के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को सभी कार्य दिवसों में पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध किया जाएगा। दोस्तों, आज का आखिरी सवाल है, किसने असम में गुवाहाटी HC के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी CJ के रूप में कार्यभार को संभाला है? विकल्प ए सतीश चंद्र शर्मा, विकल्प बी एन कोटेश्वर सिंह, विकल्प सी मुनीश्वर नाथ भंडारी या फिर विकल्प डी मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये थी आज की हमारी डेली करंट अफेयर्स क्विज। ऐसे ही शानदार क्विजेस को सुनने के लिए स्टे ट्यून्ड टू रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
हेलो फ्रेंड्स, यू आर लिसनिंग टू रेडियो MPSC गुरु पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकेडमी। दिस इज योर RJ प्रियंका वेलकमिंग यू टू आवर डेली करंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1, लियोनिड क्रैवचुक, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, हैज पास्ड अवे रिसेंटली? ए बेलारस, बी किर्गिस्तान, सी लिथुयाना, डी यूक्रेन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट यूक्रेन्स फर्स्ट प्रेसिडेंट लियोनिड क्रैवचुक हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज 88। Next question for our quiz is, to encourage farmers to grow fodder and help gaushalas, the Chara Bijai Yojana was launched by which of the following state? Is it A Rajasthan, B Madhya Pradesh, C Jharkhand or D Haryana? The correct answer for this question is D. The Haryana government has launched the Chara Bijai Yojana to encourage farmers to grow fodder and help gaushalas. The next question for the quiz, that is question number 3, is in the UN Human Rights Council UNHRC, which of the following country recently replaced Russia? Is it A Czech Republic, is it B Hungary, is it C Moldova or is it D Slovakia? Correct answer for this question is A. The UN General Assembly has voted overwhelmingly for the Czech Republic to replace Russia on the Human Rights Council. Next question, that is question number 4 for this quiz, is to digitize e-challan collections for the Madhya Pradesh Police Department, which of the following bank recently partnered with Worldline India? Is it A Bank of Baroda, is it B Bank of India, C Canara Bank or D Punjab National Bank? The correct answer for this question is B. Bank of India has partnered with the Worldline India to digitize e-challan collections for the Madhya Pradesh Police Department. Let's move on to question number 5 for our quiz. Who among the following received the Templeton Prize 2022? Is it A Roger Penrose, is it B Manabe Sukoro, is it C Giorgio Parisi or is it D Frank Wilczek? Correct answer for this question is D. Dr. Frank Wilczek, American theoretical physicist, author and Nobel Prize winner, has been announced as the recipient of the 2022 Templeton Prize. Next question, that is question number 6 of our quiz, is which among the following Indian actress recently became the first Indian to hold the position of House Ambassador for Louis Vuitton? Is it A. Alia Bhatt? Is it B. Deepika Padukone? Is it C. Katrina Kaif? Or is it D. Priyanka Chopra? The correct answer for this question is B. Deepika Padukone is the first Indian to hold the position of House Ambassador for Louis Vuitton. Next question, that is question number 7, is who among the following became the first Indian to win a gold medal at the IWF Junior World Championships 2022 in the 45 kg women's category? Is it A. V. Ritika? Is it B. Renu Bala Chanu? Is it C. Harshada Sharad Garud? Or is it D. Gyaneshwari Yadav? The correct answer for this question is C. Harshada Sharad Garud became the first Indian to win a gold medal at the IWF Junior World Championship 2022 by lifting a total weight of 153 kg in the 45 kg women's category. Next question for this quiz, that is question number 8, is when the International Nurses Day IND 2022 was observed? Is it A. 11th May? Is it B. 12th May? C. 13th May? Or D. 14th May? The correct answer for this question is on 12th May, the International Nurses Day 2022 was observed across the globe. So next question for our quiz, that is question number 9, is nutritious breakfast scheme for all government primary school students from 1st to 5th grade was introduced by which of the following state? A. Andhra Pradesh. B. Karnataka. C. Madhya Pradesh. Or D. Tamil Nadu. Correct answer for this question is D. Tamil Nadu Government Chief Minister M.K. Stalin has announced that all government primary school students from 1st to 5th standards will be provided nutritious breakfast on all working days. The last question for this quiz, that is question number 10, is who among the following took charges as the acting Chief Justice CJ of the Guwahati High Court in Assam? Is it A. Satish Chandra Sharma? B. N. Koteswar Singh? C. Munishwar Nath Bhandari? Or D. Manindra Mohan Srivastava? The correct answer for this question is B. The President of India, Ramnath Kovind, has appointed Justice N. Koteswar Singh, Senior Most Judge of Guwahati High Court, as Acting Chief Justice of the High Court. So that's all for today's quiz. We shall meet tomorrow. Thank you.